Guru Sahib. ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन श्लोक संख्या 8 और 9 और 10 ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनम् नैव दत्तम् द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्षसंख्यैर्हुतवह वदने नार्पितं बीजमन्त्रै नो तप्तं गांगतीरे ब्रज पनियामै डोद्रजाप्यैर्न वेदै क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमय ऋत कुंडलै सूक्ष्म मार्गै शान्ते श्वान्ते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योतिरूपे पराख्ये लिंगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतम् शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शम नग्नो निशंगशुद्ध त्रिगुण विरहितो ध्वस्तमोहांधकारो नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदित भवगुणो नैव दृष्ट कदाचिन् उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलं शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो शिव 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 भो महादेव। क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम शिव भगवद्भक्तजन भक्त भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं हे शिव क्षन्तव्यो मे पराध। श्लोकों को जब आप देख रहे होंगे एक बात स्पष्ट और स्पष्टतर हो रहा है। पहले श्लोकों में देखिए क्षमा भक्त मांग रहे हैं, द्वितीय श्लोक में आकर के एक बार निवेदन करते हैं शंकरम न स्मरामि। परंतु उसके बाद से और श्लोकों में इस प्रकार की एक प्रार्थना नहीं मिलाना रहे कि तुम्हें हमने स्मरण नहीं किया, शंकरम न स्मरामि। और फिर जितना साधक अपने विचार अपने व्याकुलता से वो व्यथित होते उतना उतना वो स्पष्ट रूप से ईश्वर के समक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि तुमको मैंने स्मरण नहीं किया। अद्भुत एक प्रार्थना है नारायण, जहां भक्त एक समय में आकर के स्मरण को जो विषयों के द्वारा आवृत विषयों से प्रभावित था और वो कर नहीं पाया वो स्वीकार कर रहे क्षण न संकरम न स्मरामि। कल्याण तो चाहा, ऐसे नहीं कि हम कल्याण नहीं चाहते हैं भला नहीं चाहते, परंतु जिसमें आत्यंतिक कल्याण है वो जो शंकर शम कल्याणम करोति इति शंकर, वो शंकर को हमने स्मरण नहीं किया। इसीलिए देखिए 9-10 और उसके एक श्लोक पहले से प्रारंभ करते हैं शंकरम न स्मरामि शंकरम न स्मरामि। क्षमा तो मांग ही रहे प्रथम श्लोक से ही, और ऐसा एक चित्त वृत्ति में भाव है कि कल्याण चाहा और कल्याण के लिए हमने क्या क्या किया, परंतु हे शंकर तुम्हारे स्मरण करने से जो कल्याण होने वाला था वो तो हमने किया ही नहीं। इसीलिए वो एक शब्द एक भाव को लेकर के ईश्वर के समीप पहुंचते हैं और कहते हैं क्षमा तो करो परंतु हमने तो तुम्हें याद भी नहीं किया। और हम देखेंगे आगे श्लोक में जाकर के व्यथित चित्त होकर के वो चुप हो जाते हैं और क्षमा भी नहीं मांगते। क्षंतव्यो मे पराध शुव 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 भो, ये भी और अंतिम श्लोकों में देखिए और नहीं है। अपूर्ण रूप से वो समर्पित होकर के विसर्जित हो जाते हैं कि अब और क्षमा के भी प्रार्थी नहीं हूं। ईश्वर जब प्रिय के परमत्व को प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम जब तक बाहर का अथवा ऊपर ही हो तब तक नारायण बोलने कहने करने की अपेक्षा, और जब वही प्रेम प्रियतम के लिए जो प्रेम वो व्यक्त कर रहा था, उस प्रियतम का आविष्कार नैकट्य का जब अनुभव करने लगता है, उस समय और कहने बोलने और करने की अपेक्षा नहीं, वो चुप होकर के उनकी उपस्थिति को स्मरण करता है, अनुभव करता है। एक व्यक्ति अपने प्रियतम को एक पत्र लिख रहे हैं, वो भी गहन रात्रि में चारों तरफ प्रकाश को बिजली को बंद करके छोटा सा एक दीपक जला करके और वो अपने भावों को अपने प्रियतम के पास व्यक्त करने के लिए लिखने के लिए बैठा, तन्मय होकर के अपने भावों को लिख रहे हैं। अचानक वो देखता है कि जिनको वो पत्र लिख रहा था वो सामने उपस्थित है आकर के। अरे तुम, वो पूछते रहे तुम तो क्या लिख रहे थे, मेरे को पत्र लिख रहे थे, लिखो लिखो लिखो। बोलना और लिखने का नहीं है, जो मैं लिख रहा था वो तुम सामने हो। ठीक उसी प्रकार जब प्रार्थना अपनी न्यूनता कमी को प्रकट करते 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 रोते रोते चित्त शुद्ध हो जाता है, वो जो शांतम शिवम अद्वैतम उनका अनुभव जब साधक कर लेते हैं, उस समय और प्रार्थना भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए अंतिम चरणों में हम देखते हैं क्षंतव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। ये भी नहीं है, और वो क्षमा करो हे जगदीश्वर, यह भी नहीं कह रहे। इस श्लोक में ये एक अपूर्वता है। भगवत भक्तजन, कल हम लोगों ने सुना कि जो शिव मंत्र जप करना चाहिए था, जो इस जीवन में प्रचुरतरधनम नैव दत्तम द्विजेभ्य दान करना आवश्यक था, वो भी नहीं किया। जो आहुति रूप में यज्ञ करना था वो भी नहीं किया। केवल उतना ही नहीं, इस शरीर में जो बीज मंत्र के द्वारा इस स्निग्ध करना था, स्निग्ध करना, वो भी हमने नहीं किया। हुतवह वदने नार्पितम बीज मंत्रैहि नो तप्तम गंगतीरे व्रत जपनियमैहि मेरे जीवन में कोई तप्तता नहीं है, कष्ट हमने कभी सहन नहीं किया तुम्हारे नाम पर, और न तो हमने व्रत लिया, न जप न नियम। रुद्र जाप्यैर्न वेदैर, और वेदों में श्रुतियों में जो रुद्र जप की बड़ी महिमा, वो भी हमने नहीं किया। और फिर एक प्रार्थना करते हैं, क्षमा कर दो प्रभु। भगवत भक्तजन, आज भक्त प्रार्थना करते हैं, स्थित्वा शान्ते स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमय मरुत् कुंडले सूक्ष्म मार्गे शान्ते श्वान्ते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योतिरूपे पराख्ये लिंगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलगतनुगतम् शंकरं नास्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। भक्त प्रार्थना करते हैं, ध्यान की प्रसंग है कि जिस स्थिति को प्राप्त करना था, स्थित्वा स्थाने, आपका असली स्थान कहाँ है महाराज, कहाँ आप जाना चाहते हैं, कहाँ डूबना चाहते हैं? जहां डूबना चाहते हैं वहां तो डूबे नहीं, और संसार में डूब डूब करके मर रहे। भक्त आचार्य प्रार्थना करते हैं, स्थित्वा स्थाने, अरे वो स्थान में जाना चाहिए था, स्थित होना चाहिए था। कौन सा वो स्थान है? सरोज महाराज, वो जो सहस्र दल कमल है, जो अष्ट दल कमल है, ये जो षड चक्र है हमारे शरीर में, अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान, यहां से लेकर के हृदय अष्टदल, और फिर कंठ षोडश दल पद्म, और फिर सहस्रा वो जो है सहस्र दल पद्म। भक्त प्रार्थना करते हैं, स्थित्वा स्थाने सरोज, भाई सरोज में जाना तो पड़ेगा, कोई चारा नहीं। इसलिए वो जो प्रत्येक कमल में, प्रत्येक चक्र में चार, पहले चार दो पंखुड़ी, फिर उसके बाद वो विकसित होते होते चार, फिर छह, फिर आठ, फिर सोलह, फिर सहस्र, ये है हमारे बॉडी में चक्र, षड चक्र। तो प्रत्येक चक्र में ये न्यास किया जाता है। देखिएगा कर्मों में एक एक वर्णों को बैठा करके, और फिर वो शुरू होता है हम स, दो जो कमल है आपके मूल, वहां पर ही कुंडलिनी मार करके वो शक्ति जिसको आप जगाना चाहते हैं, साधक विकसित करना चाहते, वो सोई हुई है, और उसी को यौगिक प्रक्रिया से, ध्यान से, प्रार्थना से, निशंगता से वो जगाते हैं, और वो चलते 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 सहस्रा सहस्र दल विशिष्ट कमल, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, वो स्थान अपना है स्थित्वा स्थाने सरोजे। इसलिए पहले अपने हृदय कमल पर चिंतन करो। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। सब लोग अपने हृदय कमल में वो शंकर विराजमान है, थोड़ा स्मरण कीजिए। भाई आज एक बड़ा अच्छा तिथि है अक्षय तृतीया, आज के दिन ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर लो। आपके हृदय में जो हृदय कमल है उसमें 8 पंखुड़ी है, अष्टदल विशिष्ट, और उस अष्टदल विशिष्ट अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, वो आपके जो ज्योति स्वरूप ईश्वर है वो वेष्टित है। थोड़ा कल्पना भी करो, देखना तो दूर, कल्पना करो कितना प्यारा। वो 8 दल है और उससे वो वेष्टित आपकी ज्योति जो आप है, आप मिन जो आप मैं कर रहा, वो जो ज्योति अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम। सारे समुद्भव का कारण है, संपूर्ण सृष्टि विश्व उसी से, उसी लिंग से, उसी तत्व से निर्गम हुआ, निर्गत हुए। विश्व को जाने दीजिए, आपका जो भी है मैं करके जो भी आप अनुभव करें, वो जो केंद्र है, वो जो मुख्य बिंदु है, उसको याद करो। कहीं नहीं है वो, आपके हृदय पद्म पे विराजमान है। सर्व समुद्भव कारण लिंगम, वो सर्व समुद्भव आपके, आप जो अनुभव कर रहे हैं। अब थोड़ा विचार करो, वो जो मैं हूं, वो मैं का मूल वो है, हमें जाना ही पड़ेगा नारायण, उसके बिना हम रह नहीं सकते। ये इसीलिए उपनिषदकार बारंबार कहते हैं, इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेत यहावेदित महति विनष्टि। अगर इस जीवन में तुमने अनुभव कर लिया, अवेदित जान लिया, अथ सत्यमस्ति, तुमने जीवन को सत्य कर लिया। नो चेत अवेदित, अगर जाना नहीं, महति विनष्टि, महान विनाश को तुमने पा लिया, महान क्षय क्षति कर लिया। सर्व समुद्भव कारण लिंगम, उस लिंग में उसी से समस्त कुछ विकसित प्रखरित प्रकटित हो रहे महाराज। और तुम जो अपने को दरिद्र मान रहे हो, देखो दरिद्रता का क्या परिभाषा बदल जाते हैं। ये जो तुम छोटा मान रहे हो अपने को, क्षुद्र मान रहे हो, मैं अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्ति वाला हूं, छोटा हूं, कुछ नहीं आता है, प्रार्थना करते नहीं, उससे प्रार्थना करो। अरे तुम तो सर्व समुद्भव है, तुम्हारे में वो शक्ति सामर्थ्य है जिससे तुम सब कुछ बनाते हो, बना रहे हो, सर्व समुद्भव का मूल कारण है। अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम, हे लिंग, वो जो लिंग स्वरूप वो अष्ट दरिद्र को मिटाता है, अनिमा महिमा लघिमा प्रकाम प्राप्ति, ये सब दरिद्रता है। और हमारे ध्यान में तो वो सब है ही नहीं नारायण, वो है दरिद्रता, वो तो है ही नहीं। तो वो दरिद्रता भी मिटाने वाले वो तत्व है, जो सर्व समुद्भव है, जो अष्टदल वेष्टित है, जो अष्ट दरिद्र को मिटाने वाले हैं।
तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम।
वैसा जो सदाशिवलिंग है उस लिंग को मैं प्रणमामि। वो सरोज है, उस सरोज में स्थित होना था। और उसमें पहुंचे कैसे महाराज? उस सरोज तक हम पहुंचे कैसे?
स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमय मरुत् कुंडले सूक्ष्म मार्गे।
अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है और उस सूक्ष्म मार्ग में जाने के लिए आपके पास वेद प्रतिपादित वैदिक मंत्र है।
प्रणव माया मरो,
प्रणव, प्रणव मतलब ओमकार। ये ओमकार को लेकर के उसके सहारा उस पर चढ़ करके आप उस सूक्ष्म मार्ग पर चलो। देखो ग्रंथकार उपनिषद ऋषि कितने हमारे लिए करके गए हैं, फिर एक ही चेष्टा है कि किसी भी तरह वो पहुंचे अपने स्थान पर, तो जरूर पहुंचे। आचार्य प्रार्थना करते हैं उस सूक्ष्म मार्ग में जहां कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, जो मूल शक्ति है, जगत के सृष्टि स्थिति पालनी शक्ति है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो।
शक्ति को केवल बाहर मत देखिए, वो तो शक्ति है, परंतु जिस शक्ति के सहारे आप इस जीवन को, आपके जीवन चल रहा है, वो शक्ति को अनुभव करो और फिर उससे प्रार्थना करो। तो वो प्रार्थना आध्यात्म के लिए भी, आधिभूत के लिए भी, आधिदैव के लिए भी हो जाएगा। और जब हम अपने से अलग करके मेरे लिए वो शक्ति जो सर्वत्र है उस शक्ति को प्रार्थना करते हैं, उसको हम ध्यान में नहीं ला पाते हैं। तो वो शक्ति को आविष्कार करो, जो जिस शक्ति के सहारे यह मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आश्रम तक पहुंच गए हैं, अभी फिर वापस जाना है, श्वास चल रहे हैं, हार्ट बीट सब काम अपने अपने कर रहे हैं, प्रत्येक सेल डिवीजन हो रहे हैं, प्रत्येक सेल तक ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं, प्रत्येक इम्यूनिटी सिस्टम को जो बना करके, जिनके अधीन हो करके चल रहा है, उससे हम बेखबर है। एक बार तो प्रणाम करें दिन भर में।
शक्ति रूपे सनातनी,
और वो सनातनी है, वो सनातन, वो कभी उत्पन्न नाश वाला नहीं है, वो सनातन सदातन। अभी भी जो हमारे श्वास चल रहे अति वृद्ध वो है, तो ही इसकी अस्तित्व है। उसको याद करो और उस शक्ति जो कुंडलिनी मार के बैठे जोगी जिसको जगाना चाहते हैं, ये जो शिव शंकर के सांप देखते हैं ना फण, वो क्या है महाराज? वो तो महायोगी है, इसीलिए वो दिखाते हैं कि देखो ये सर्प तुम्हारे प्रतीक के अंदर है, उसको जगा। और जगाने का स्वरूप क्या है? केवल ये फण। इतना तक वो बाबा शंकर हम इंडिकेट करते हैं कि वो शक्ति तुम्हारे में है, उसको पद्धति के द्वारा, साधना के द्वारा जगा करके उसको विकसित करो, वही है सुख का साधन। और वो जो शक्ति है कुंडलिनी, उसको कैसे प्राप्त करे?
प्रणव माया मरुत,
वो प्रणव ओमकार का सहारा लेकर के चलो। इसीलिए भगवत भक्तजन, ओम की बड़ी महिमा है, ओमकार का उच्चारण महान फलदाल, फल देने वाला है। प्रणवम दीर्घम उच्चारय, विधि है कि प्रणव का जब उच्चारण करते हैं दीर्घ हो, ओम मकार में थोड़ा और ये करना, अकार उकार मकार। उपनिषद के विचार करें तो अकार में जो जो भाव है वो उकार में विसर्जन कर आहुति दो, फिर अकार और उकार का जो जो भाव है वो मकार में जाकर आहुति दो, और फिर मकार के म भी बिंदी में जाकर के वो सर्व बीज भूत होकर के स्थित हो जाओ। संपूर्ण सृष्टि स्थिति लय जागृत स्वप्न सुसुप्ति इस विश्व प्रपंच के जो मूल है नारायण वो है ओम। इसलिए इसी ओम से ही जगत की सृष्टि, और वो सृष्टि होते 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 परा बाप पश्यंती मध्यमा वैखरी। देखिए परा मूल है, परा के बाद आ गया पश्यंती, पश्यंती के बाद मध्यमा कंठ, और फिर वैखरी बिल्कुल विखरित होते हैं। तो हम जो भी भजन कीर्तन करते हैं ये सब वैखरी जप में आता है। इसका भी बहुत महत्व है मन को शांत करने के लिए, परंतु उपनिषदों में शास्त्र में है कि वैखरी जप से भी जब आप मानसिक उपांशु जप में पहुंच जाते हैं, मध्यमा स्थिति, मध्यमा के तीन भाग करते हैं मानस उपांशु, ये तीन भाग में जब उसको और मतलब जब आप जोर से बोलते ओम कृष्णाय नमः ओम क्लीं कृष्णाय, उससे भी 100 गुना ज्यादा फल देने वाला हो जाता है जब आप मन ही मन उस समय भी करते। ये भी बाहरी जप ही है, उपांशु करो चाहे मानस करो, उस समय कोई सुनता नहीं है, परंतु आप सुन रहे हैं कि नहीं करने वाला, उससे भी थोड़ा और गंभीर गहन में जाता है। तो आप बोल रहे हो मंत्र और उसमें आप देख रहे हो मंत्रावयव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र अवयव को उच्चारण नहीं हो रहे, परंतु आप उस मंत्र के प्रत्येक अवयव को आप देख रहे हो, वो भी बाहरी जप है। परंतु जब आप कीर्तन जोर जोर से बोलते हैं उससे श्रेष्ठ 100 गुना ज्यादा वो उपांशु, उपांशु से 100 गुना ज्यादा फल देने वाला मानस, और वो मानस में जाकर के कहते हैं वो अष्टदलोपरि उनके साथ साक्षात्कार होते हैं मानस के अंतर में। और फिर महाराज कहां जाना है हमको, स्थित्वा स्थाने सरोजे सहस्रा तक जाना है, लेकिन एक अवलंबन आपको दिया कैसे जाए किसके सहारे जाए, आप अकेला नहीं है, ईश्वर वेद आपके सामने वो ओम दिया है। इसलिए ओम का बड़ा महत्व है नारायण, जो हमारे सनातन परंपरा में मिले हैं वो जो ओम तत्व है उसको थोड़ा चिंतन जरूर करे, नित्य प्रतिदिन ओमकार के उपासना करे, ओमकार के चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुष्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिं। कितना साफ लिख देते ओम इत्येकाक्षरम, ये जो ओम है ये एकाक्षर युक्त है, वो ब्रह्म है परब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, तो इस ब्रह्म को क्या करे, व्याहरन उच्चारण करो, व्याहरन मतलब उच्चारण करो, उच्चारण करो। अरे उसको वैखरी में तो लाओ, जो तुम्हारे अंदर उसको बाहर तो करो, अन्य शब्दों के शब्दों को छोड़ करके उसको तो उच्चारण करो। मुझे आपके एक सत्संग को बहुत मैं याद करता हूं, उनका नाम उस दिन किसी ने मैं पूछा था, वो पहले जो हम ग्रंथ लेने जाते थे एक वृद्ध थे, वो उनके मुंह में इतना अच्छा लगता था, वो कभी भी जाए ओम नमो भगवते वा ऐसे वो बोलते, इतना प्रेम से, चिमन भाई सारी हाँ उनका एक हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम, इतना अच्छा लगे। देखो ये भक्तों को देख करके हम थोड़ा प्रेरित होते हैं, और क्या कर सकते। और वो बेचारे ऐसे वो करते, वो ओमकार का उच्चारण, व्याहरण भगवान कह रहे उसको उच्चारण करो, माम अनुस्मरण। व्याहरण मुख मोड़े से, कोई उस दिन बोले थे मोड़े थी बुलावे छे, पढ़ मन थी न थी तो कैसे होगा। मुख से बोलने से नहीं होगा, मन में भी तद जप तदर्थ भावनम, जो बोलो वो उसको स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं व्याहरण माम अनुस्मरण, जब उनको उच्चारण कर रहे हो पूरे वो स्मरण हो जाए, वो शिव तक, वो ब्रह्म तक, वो शक्ति तक, वो मूल तक आप पहुंच जाओ। देखो कैसे आपका मन चंचल होता है, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल मन चंचल होगा, अगर आप इस प्रकार विधि से जाओ। फिर वो कहते हैं माम अनुस्मरण, अगर अनुस्मरण करते करते शरीर चला जाए, यह प्रयाति अनुभव, गुप्ताचार्य जी गीता भाष्य में लिखते यह प्रयाति न तो देहम प्रयच्छति, वो लिखते हैं कि देह त्याग के बाद वो प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ये जो ओम उच्चारण करो उसी समय तुम प्रयाण करो, मतलब जा रहे हो, गच्छति कहां जा रहे हो, सब छोड़ करके वहां तक। देखो क्या विचार क्या लिखा, जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करते समय ही आप कहां पहुंच रहे, सब छोड़ छाड़ करके वहां जाकर। यह प्रयाति, प्रयाति शब्द, अरे वहां तक जाओ, वहां तक पहुंच जाओ, अरे शरीर तो जाएगा उसको छोड़ो ना। अब जो उच्चारण कर रहे हो तो उस ओंकार के उच्चारण के समय प्रयाण करो, चलो वहां तक। त्याजन देहम का क्या व्याख्या करेंगे, शरीर को त्याग, ऐसे ही तो अर्थ हो ना, शरीर अभिमान को त्याग करके ब्रह्माभिमान से युक्त हो जाओ। ये और ऐसे करते करते, अभ्यास करते करते, जब आपके शरीर प्रारब्ध खत्म होने के बाद ये शरीर भी जाएगा, तब तो सदगति मिलना ही मिलना है। परंतु जब आप अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तब भी अगर उसको स्मरण करते करते देह भाव से ऊपर उठ करके वहां तक पहुंच जाते हैं। सयाति परमाम गति, वो महाराज परम गति को प्राप्त कर लेते। इसीलिए ओमकार की बड़ी महत्व है नारायण, इसको थोड़ा जरूर चिंतन करें। जो आपके पास है, वेदों में दिया गया है, साधन पद्धति के रूप में आपको मिला है, उसको थोड़ा याद करो। और फिर उपनिषदों में आया ना, प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव धनु, ये प्रणव जो है ओंकार, यही है तीर धनुष। सरो यात्मा, वो सर क्या है इसके ऊपर, च आप आत्मा, ब्रह्म आपका लक्ष्य है। आपको किसको वो तीर कहां चलाना है महाराज, ब्रह्म आपके लक्ष्य। देखो क्या उपनिषदों की दृष्टि, ये प्रणव है तीर, उस पर आप बैठो और उस तीर को साधो कहां, ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। कैसे साधे, अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, अप्रमत्त हो करके। किसने वो नीचे देख करके ऊपर मारा था, अर्जुन, आप नहीं ना मार दो एक बार हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन अर्जुन की जो ये था वो केवल अर्जुन क्या देखा, केवल वो जिसको भेदन करना था वही देखे, और हम लोग और भी देखने लगे ना। अर्जुन मार कर भी नहीं देखा और हम लोग बाकी सब देख लिए, तो वो भेदन अप्रमत्त, प्रमाद रहित होकर के उसको भेदन करो। अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्मयो भवे, तन्मयता के साथ उसका भेदन करो, वही आपका स्वरूप है, वही आप पहुंच जाओगे। इसलिए ओंकार की बड़ी महिमा है। उपनिषदों में ब्रेदर छांदोग्य उपनिषदों में आया है कि एक बार देवताओं के पीछे मौत लग गई। देखो देवताओं भी जीने के लिए कैसे हैरान होते हैं, आप लोग तो शायद इतना हैरान नहीं होते होंगे। उनके पीछे मौत पड़ गई, हम लोगों के पीछे पड़ा नहीं बाबा, ऐसा नहीं। आज अक्षय तृतीया है, नारायण जिस दिन से जन्म लिया ना उसी दिन से पीछे पड़ा है वो सज्जन, लेकिन उसको हम डोंट केयर, हम भी कम नहीं है। चल तू जैसा तैसा, हम तो याद भी नहीं करते। तो वो मौत जब देवताओं के पीछे पड़ गई महाराज, तो क्या कर देवताओं भागे, भागते भागते कहां जाए, उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद की कथा है, वो जाकर के वेदों के जंगल में घुस गए मंत्र में। इसीलिए कहते हैं मंत्र, वेद मंत्र को छंद शब्द से कहा ना, छंद मतलब आच्छादन कर दिया। इसलिए प्रत्येक मंत्र में देखिए बहुत सिग्निफिकेंस है, प्रत्येक मंत्र में देवता आच्छादित है। आप उस मंत्र को निखारो, प्रयोग करो, साधना करो तो देवता प्रकट। तो वो जो है देवता छंद के रूप में देवता छुप गए महाराज वेदों में, अब वो मृत्यु मौत को मिला ही नहीं, कहां गए। परंतु ध्यान रखिएगा सरोवर में मछली भी छुपे रहते, परंतु तो बगुला बैठे रहते, आ तेरे को देखता हूं, किंगफिशर ड्राइव मार करके उसको निकाल लेते। तो कहीं भी जाओ मौत तो महाराज, तो देवताओं को वो मौत जो है पता लगा ली, अरे ये तो वहां छुपे हैं। अभी लोग और घबराए कि कहां जाए, अब तो कहीं नहीं स्थान। फिर उन्होंने देखा कि अरे उस मंत्र रूपी जंगलों में देखा एक किला दिखा, अरे वो सुरक्षित स्थान होगा। तो वो किला में जाके सब देवता प्रवेश हो गए। वो किला कौन है, ओम बीज, इसीलिए बोलते हैं। उस ओमकार रूपी किला में जाकर प्रवेश कर गया और वहां महाराज मौत नहीं घुस पाए। इसीलिए कहते ओमकार के जो उपासक है वो अमृतत्व को प्राप्त करते। अमृतत्व मतलब अमरणशील हो जाते, अमरण धर्मा को प्राप्त कर ले, वो मृत्यु को पार कर जाता है। इसलिए ओंकार उपासना की बड़ी महत्व है। प्रतिदिन ओम के साथ संपुटित मंत्रों का जप हो, प्रतिदिन ओंकार का चिंतन हो। और भगवान के सबसे प्यारा नाम क्या है, आपका कितने नाम है, हजार नाम होगा नहीं, लेकिन सबसे प्यारा नाम क्या है आपसे अगर पूछे, जिसको कहने से उच्चारण मात्र से आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है हमारा, वो सबसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में, ये सबसे प्यारा नाम तो मेरा ओम, देखो उससे बुलाओ। और जब आप बुला रहे हो इतना विश्वास के साथ हो कि हमारे हर पुकार, जैसे आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, आपके एक विश्वास है कि उसको हम वो हमारी आवाज सुने तो वो जरूर आवाज देगा, ठीक उसी प्रकार इस विश्वास के साथ दृढ़ता से उसको पुकारो तो जरूर आपके प्रत्येक अर्पण, प्रत्येक उच्चारण, प्रत्येक व्याहरण उन तक पहुंचते हैं। लेकिन वो विश्वास, इसलिए ओंकार वो अमृतत्व दिला सकते, ओम के सहारे आप अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। नचिकेता कहां पहुंचे थे, यमालय में, और नचिकेता का क्या जिज्ञासा रही, नायम आत्मा अस्तित्व के नेके बा। देखो क्या बालक पहुंचा यमराज के पास, और पूछकर पहुंचने के बाद यमराज से पूछते हैं कि आप ही सही बता सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं, बताओ। प्रश्न करता तो ठीक है, ठीक है, पूछने वाला ऐसा ढूंढा कि वो बगैर और यमराज के सिवाय और कौन उत्तर दे सकते इसका, बताओ मृत्यु के बाद क्या रहते। यमराज ने देखे ये छोटा सा बालक 5 साल की, ये क्या इसको समझेगी इतना गहन कठिन प्रश्न, तो उसको बहुत लोभ देना चाहा। यमराज नचिकेता हमारे जैसा नहीं हो, फ्री वाला मामला नहीं, बाय वन गेट वन फ्री ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो बिल्कुल किसी पर भी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया ना, बिल्कुल नहीं। अंत में कहते तुमको बहुत आयु मैं दे दूंगा, तुम भोगों से खुद को पूर्ण करते रहो। नचिकेता वो बालक उत्तर देते हैं, अति दीर्घ जीविते को रमेत। हे जमराज तुम ही बताओ, जो अधिक आयु पा करके कौन आनंद से सुख से जी रहा है देखो। और फिर बोलते हैं कि अच्छा ये दिखा रहे ऐसे करके, ये सब वाद्य यंत्र है, ये सब परियां हैं, सब ले लो तुम। वो उनको यमराज को नचिकेता कहते तवई व नित्य गीते बाहवे, ये तुम्हारा जिनिस तुम्हारे पास ही रहने, तो मेरा तो वो उत्तर चाहिए बताओ। और फिर उनको क्या उत्तर देते हैं, जब सारा परीक्षाओं से अतिक्रमण कर गए, पास हो गया, वो अपने प्रश्न पर दृढ़ है, जानने की जो इच्छा है, फिर उनको नचिकेता को यमराज कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे ओम इत्येतत्। देखो ये है ओम, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, जिस पद के व्याख्यान के लिए सभी वेद लगे, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, और जिनके लिए सारी साधना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ जीवन में वर्ण आश्रम के जो भी तपस्या है, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, तपस्या के द्वारा क्या पाना चाहते, वो ओम। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिनको पाने की इच्छा से, यदिच्छन्तो हो ब्रह्मचर्यं चरंती, उसको जमराज कहते नचिकेता, उसको मैं तुमको संक्षेप में बताता हूं, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, संग्रह रूप से मैं तुमको उस पद को बताता हूं। क्या है वो पद, ओम इत्येतत् ओम। इसलिए भगवत भक्त जी ने ओमकार के सहारे हमें उस अपने स्थान तक पहुंचना है, जरूर हम पहुंचे। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के कृपा अनुग्रह, शब्द नारायण बहुत हिलाता है, उनकी कृपा को पाने की प्रतीक्षा क्या करना है, जो उन्होंने कृपा कर दिया है उसको थोड़ा स्मरण तो करो। चैतन्य महाप्रभु एक प्रार्थना करते, मैं समाप्त कर रहा हूं, कि देखो ईश्वर आपके सामने मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्वैवम् ईदृशमिहाजनिनानुराग एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्वैवम् ईदृशमिहाजनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, ईश्वर नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति।
आपके उस नाम में छोटा सा नाम है और उस नाम में सब शक्ति आपने भर दिया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और आपने उसको लेने के लिए कोई नियम नहीं रखा। देखो कितनी कृपा, एक छोटा सा नाम है उसमें सब जो है शक्ति भर दिया। नाम नामकारी बहुधा अनेक शक्ति निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। अगर मैं चाहूं तो उस नाम के अवलंबन आश्रय करके नियम लेकर के स्मरणेन कालः मैं काल को आराम से अतिवाहित कर सकते। तुम्हारी इतनी कृपा, छोटा सा नाम शिव, छोटा सा नाम राम, छोटा सा नाम अम्बे, छोटा सा नाम कृष्ण, इतना शक्ति भर दिया। तुम्हारी कृपा अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। परंतु मैं अपने भाग अपने कर्म को दोष देता हूं। एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दूर्द्वैवम् ईदृशमिहा जनिनानुराग। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा इतनी अनुग्रह है, परंतु दुर्दैव क्या बताऊं कि उस नाम में जनिनानुराग, अनुराग ही प्यार ही उत्पन्न। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दूर्द्वैवम् ईदृशमिहा जनिनानुराग। तीन बार ओंकार का उच्चारण करके समाप्त करें एक साथ सब लोग। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।